कायरव इनाया को अपने एंसेस्टर्स के बारे में बता रहा था। उसकी बातें सुनकर इनाया के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे और वो अपने ही ख्यालों की दुनिया में खो गई। क्या हुआ, कहाँ खो गई तुम? कायरव ने उसके आगे चुटकी बजाई और इनाया हड़बड़ाते हुए होश में आई। नहीं, कहीं नहीं खोई। नहीं, कहीं तो खोई थी तुम, मैंने देखा था, तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं था। वो मैं बस सोच रही थी कि तुम्हारे दादा कितने इंटेलिजेंट थे, कितने हिम्मत वाले थे कि उनके पापा ने जो खोया उन्होंने वो सब वापस हासिल कर लिया। सब चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाते। इनाया के चेहरे पर अजीब सी उदासी और मायूसी छाने लगी। कर सकते हैं, पर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, उसके बाद कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कहना आसान है, यहाँ पेट भर खाने और सर पर छत का इंतजाम करने के लिए पैसे नहीं हैं, बाकी सब तो छोड़ ही दो। इनाया की बातें और उसके एक्सप्रेशन ने कायरव को उलझन में डाल दिया। उसके माथे पर कुछ लकीरें खिंच गईं। तुम किसकी बात कर रही हो? किसी की भी नहीं, इनाया ने बात टालते हुए कहा, और जैसे ही बाहर निकलने लगी कायरव ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक दिया और गहरी निगाहों से उसे देखते हुए बोला, तुम किसकी बात कर रही हो? सच सच बताओ। जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, मैं ना खुद कहीं जाऊंगा और ना ही तुम्हें जाने दूंगा, चाहे इंतजार में पूरी रात ही क्यों ना गुजर जाए। कायरव के इरादे मजबूत थे और पीछे हटने का कोई चांस नहीं था। इनाया कुछ देर सूनी निगाहों से अपने हाथ को घूरती रही जिसे कायरव ने पकड़ा हुआ था, फिर गहरी सांस छोड़ते हुए कायरव की तरफ नजरें उठाईं। बहुत लंबी कहानी है, कभी और बताऊं? कभी और नहीं, आज ही बताओगी। अभी अंदर चलते हैं, डिनर के बाद मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। इनाया ने सर हिला दिया। कार जैसे ही हवेली के आंगन में रुकी, सर्वेंट्स एक लाइन में खड़े नजर आए। उन्होंने राजस्थान के पारंपरिक कपड़े पहने हुए थे, सर पर साफा बंधा था, हाथ जोड़कर जैसे उनके स्वागत में ही खड़े थे। उनमें से एक आदमी उन सबके आगे खड़ा था, सफ़ेद धोती कुर्ता और लाल पगड़ी पहने। वो यहाँ का केयरटेकर था, भीवरलाल। उसने आगे बढ़कर कायरव के लिए दरवाज़ा खोला और उसके आगे हाथ जोड़े सर झुकाकर खड़ा हो गया। खम्मा घणी ठाकुर सा, खम्मा घणी भाई सा, हम आपको कितनी बार कहें कि हम छोटे हैं आपसे, हमें नाम से बुलाया करें। भीवरलाल बस मुस्कुरा कर रह गए। आप नहीं मानेंगे ना? वो अब भी मुस्कुरा रहे थे। अंत में कायरव ही उनके आगे झुक गया और उनकी हथेलियों को थामकर नीचे करते हुए बोला, अगर आपको हमें ठाकुर सा बोलकर खुशी मिलती है तो वही बोल लीजिए, लेकिन हमारे सामने ऐसे हाथ मत जोड़ा कीजिए। हमें अच्छा नहीं लगता कि आप हमसे बड़े होकर हमारे सामने हाथ जोड़ते हैं, सर झुकाते हैं। उम्र में भले हम आपसे बड़े हैं, पर ओहदे में तो आप हमसे बड़े हैं, हमारे मालिक हैं। मैं आपको अपना बड़ा भाई समझता हूँ और आप मालिक से आगे ही नहीं बढ़ते, इसके लिए मैं आपसे नाराज भी हो सकता हूँ। माफ़ी हुजूर, उन्होंने फिर सर झुकाया। कायरव ने बेबसी से सर हिला दिया। आपने एक और बार ऐसा किया तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा और दोबारा कभी वापस भी नहीं आऊँगा, कायरव ने सख्ती से धमकी दी। भीवरलाल फिर कुछ कहने वाले थे पर रुक गए। कायरव मुस्कुराया और घूमकर इनाया की तरफ आ गया। बाहर आओ, कायरव ने गेट खोलते हुए हल्का झुकाया और इनाया की तरफ हथेली बढ़ा दी, जिसे थामकर उसने कार से बाहर कदम रखा। खम्मा घणी ठाकुराइन सा, हवेली में आपका स्वागत है। इनाया के कानों में एक गहरी भारी आवाज पड़ी, उसने तुरंत सर घुमाया। भीवरलाल दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाए उसके सामने खड़ा हो गया। बोला उसने हिंदी था पर पूरा राजस्थानी टोन के साथ। इनाया की सवालिया निगाहें कायरव की तरफ घूम गई। ये भीवरलाल भाई सा है, यहाँ की सारी देखभाल यही करते हैं, इस हवेली के पुराने और वफादार केयरटेकर हैं। पहले इनके बाबा ये काम किया करते थे और अब सालों से ये सब संभालते आ रहे हैं। मेरे लिए ये मेरे बड़े भाई जैसे हैं। नमस्ते, इनाया ने रिस्पेक्ट के साथ उनके आगे हाथ जोड़ दिए और सौम्यता से मुस्कुराई। अगर कायरव आपको बड़ा भाई मानते हैं तो आप मेरे भी बड़े भाई हुए, और बड़े अपने से छोटों के सामने ऐसे हाथ जोड़ते और सर झुकाते अच्छे नहीं लगते। वैसे भी मैं आपसे बहुत छोटी हूँ तो रिस्पेक्ट मुझे देनी चाहिए आपको। भीवरलाल चौंक गए। इनाया की सोच बिल्कुल कायरव जैसी थी। ये देखकर कायरव के होठों पर गर्व भरी मुस्कान उभरी। वहीं भीवरलाल के साथ साथ वहां मौजूद सभी सर्वेंट आंखें फाड़े इनाया को देखने लगे। इनाया को ये थोड़ा अजीब लगा। वो खिसककर कायरव के पास आ गई और धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए बोली, कायरव ये सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? कायरव की मुस्कुराहट गहरी हो गई। उसने भी धीमी आवाज में जवाब दिया, यहाँ लड़कियाँ अपने पतियों के नाम नहीं लिया करती, और तुमने अभी अभी मुझे मेरे नाम से बुलाया, इसलिए ये सब तुम्हें ऐसे देख रहे हैं। इनाया की आंखें फैल गईं। ओह, फिर तुम मुझसे गड़बड़ हो गई, माफ़ी मांग लूँ क्या? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस आगे से थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन अगर मैं तुम्हें कायरव नहीं कहूँगी तो और क्या कहकर बुलाऊँगी? इनाया माथे पर बल डाले परेशान निगाहों से उसे देखने लगी। ये तो सीरियस प्रॉब्लम है, अगर तुम मुझे नाम से नहीं बुलाओगी तो कैसे बुलाओगी? इसके लिए तो कुछ सोचना पड़ेगा। कायरव ने सोचने की एक्टिंग की, पर इनाया तो सच में अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए उसी का चेहरा देख रही थी। कुछ देर सोचने के बाद कायरव ने मीठी सी मुस्कान होठों पर बिखेरते हुए कहा, तुम अकेले में मुझे पहले जैसे मेरे नाम से बुला सकती हो, पर इन सबके सामने तुम मुझे ठाकुर सा कहना। ठाकुर सा, इनाया के होंठ फड़फड़ाए और उसने सर हिला दिया। दोनों बात कर ही रहे थे कि अंदर से कुछ और नौकरानी और नौकर निकल आए, हाथों में दियों से भरी थाल भी थी। कुछ ही मिनटों में उन्होंने जहां इस वक्त कायरव और इनाया खड़े थे, वहां से लेकर हवेली के अंदर के मेन गेट तक दोनों तरफ लाइन में दिए सजा दिए। इनाया आंखें बड़ी बड़ी करके बस देखती ही रह गई। तुम इतने में ही इतनी हैरान हो? अंदर चलो, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। इनाया की सवालिया निगाहें कायरव की तरफ घूम गई, पर जवाब देने के बजाय वो दिलकश अंदाज में मुस्कुराया और उसकी हथेली थामे आगे बढ़ गया। हवेली का मेन दरवाजा फूलों की झालरों और बंधनवार से सजा था। दरवाजे पर कुछ फीमेल सर्वेंट्स के साथ एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी, जो उन सबकी हेड थी और रिस्पेक्ट से सब उन्हें दाईसा कहते थे। उनकी उम्र काफी लग रही थी, पर शरीर से फिट नजर आ रही थी। चेहरे पर अलग सा तेज था। पारंपरिक राजस्थानी पोशाक में वो खूबसूरत लग रही थी। होठों पर मुस्कान सजाए हाथ में थाल पकड़े, जिसमें लाल चंदन, कुमकुम, चावल और जलते दिए थे, वो शायद उन्हीं दोनों के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही कायरव और इनाया दहलीज पर पहुंचे, दाईसा ने पीछे खड़ी सर्वेंट को आंखों से कुछ इशारा किया और वो तुरंत ही वहां से चली गई। कुछ देर बाद लौटी, उसके हाथ में एक थाल थी जिसमें लाल गोटेदार चुनरी रखी थी। दाईसा ने अपनी थाल उसे पकड़ाई और चुनरी को लेकर इनाया को उड़ा दिया। फिर उन्होंने धीमे स्वर में मंगल गीत गुनगुनाते हुए उनकी आरती उतारी। इनाया के माथे पर हल्का सा कुमकुम लगाया और कायरव को तिलक किया। दोनों पर फूल और अक्षत छिड़के। उसके बाद दहलीज पर चावल से भरा करश रख दिया। रिवाज है बहुरानी, नई बिंदनी अपने सासरे में पहला कदम इस कलश को लुढ़का कर ही रखती हैं, दाई ने धीमे से कहा। इनाया ने संकोच से कदम बढ़ाया, कलश लुढ़कता हुआ आगे गया और कायरव का हाथ थामे आलते से सने पैरों के छाप करती हुई वो कुछ कदम अंदर आई। आंगन में गूंजते ढोल नगाड़ों और पधारो महारे देश की धुन के बीच इनाया और कायरव हवेली की दहलीज लांघकर भीतर आए। इनाया ने पहली बार उस हवेली की विशाल दीवारों, ऊंचे झूमरों और झरोखों से झड़ती पीली रोशनी को देखा। उसे लगा मानो सदियों पुरानी हवेली अपने नए मालिक और उसकी दुल्हन का खुले दिल से स्वागत कर रही हो। ठाकुरानी सा तो साचों में देवी को रूप है, आज हवेली में लक्ष्मी जी पधारी हैं, दाईसा ने इनाया के गाल को छूते हुए धीमे से कहा। इनाया, जो नजरें घुमा घुमा कर उस हवेली को देख रही थी, अब आंखें बड़ी बड़ी करके उन्हें देखने लगी।
कायरव की आंखों में हल्की सी चमक थी। ये सब उसके खानदान की परंपरा थी और इनाया पहली बार उस शाही माहौल में कदम रख रही थी। आज उसे सही मायनों में रायचंद खानदान की बहू का पद मिला था और उसे वो इज्जत मिल रही थी जिसकी वो हकदार थी। लेकिन इनाया ये सब देखकर शौक थी। वहां जश्न सा माहौल था, हर चेहरे पर मुस्कान थी और इतना ग्रैंड वेलकम हुआ था उसका, जिसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। टू बी कंटिन्यूड।